नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विदेशी कोषों की लगातार निकासी और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के चलते रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की गिरावट के साथ 78.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेश में डॉलर की मजबूती से भी रुपये की धारणा पर असर पड़ा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये के नुकसान को सीमित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 78.13 पर सपाट खुली और इसने दिन के कारोबार के दौरान 78.13 के ऊपरी और 78.40 के निचले स्तर को देखा। रुपया अंत में अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 27 पैसे की गिरावट के साथ 78.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों की विनिर्माता ओकिनावा ऑटोटेक ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के करौली में एक नए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए वह 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ओकिनावा ऑटोटेक ने एक बयान में कहा कि 30 एकड़ भूमि पर बनाए जाने वाले कारखाने की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख इकाइयों की होगी और वहां अक्टूबर 2023 से परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस संयंत्र से 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी का तीसरा संयंत्र होगा। इसके अलावा दो कारखाने राजस्थान के अलवर में हैं। ओकिनावा ऑटोटेक के संस्थापक तथा प्रबंध निदेशक जितेंद्र शर्मा ने कहा, बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते हम इस क्षेत्र के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बड़े कारखाने में प्रस्तावित अनुसंधान और विकास सुविधाएं भविष्य के अनुरूप होंगी ताकि हम आगे इस क्षेत्र की मांग को पूरा कर सकें। टाटा स्टील के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की पृष्ठभूमि में उसने अप्रैल में रूस के साथ कारोबारी संबंध तोड़ने की घोषणा करने के बाद से पीसीआई कोयले की कोई खरीद नहीं की। गत 20 अप्रैल को टाटा स्टील ने कहा था कि वह रूस के साथ कारोबार रोक देगी। हालांकि कारोबार का परिचालन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए और रूस पर निर्भरता खत्म करने के लिए कंपनी की भारत, ब्रिटेन और नीदरलैंड सहित इस्पात विनिर्माण इकाइयों ने वैकल्पिक कच्ची सामग्री की आपूर्ति करवा ली। टाटा स्टील के प्रवक्ता ने कहा, मीडिया के कुछ वर्ग में रूस से कोयले की खरीद और आयात से संबंधित गलत जानकारी के मद्देनजर टाटा स्टील स्पष्टीकरण देना चाहती है। दरअसल कंपनी ने मार्च 2022 में 75,000 टन पीसीआई कोयले की आपूर्ति का सौदा किया था और टाटा स्टील की अप्रैल की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले ही यह अनुबंध प्रभावी हो गया था। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह के साथ कथित 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ ताजा मामला दर्ज किया है। ये एजेंसी की जांच के दायरे में आई अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई आरोपियों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ले रही है। जांच एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तत्कालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और रियलिटी क्षेत्र की 6 कंपनियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के साथ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने को लेकर मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बैंक से 11 फरवरी 2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। वधावन बंधु कथित भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच के घेरे में है। घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस को आधार हाउसिंग फाइनेंस से कारोबार प्रक्रिया में बदलाव के लिए एक अनुबंध मिला है। हालांकि अनुबंध राशि का खुलासा नहीं किया गया। दोनों कंपनियों ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आधार हाउसिंग बाजार में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए टाटा समूह की कंपनी के ऋण और प्रतिभूतिकरण मंच का इस्तेमाल करेगी। बयान के अनुसार टीसीएस के साथ ये साझेदारी एकीकृत और ब्लॉकचेन आधारित क्लाउड मंच का उपयोग करके कारोबार प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने के लिए है। सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रमुख उज्जवल माथुर ने कहा, टीसीएस का ऋण और प्रतिभूतिकरण मंच आधार हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने में मदद कर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को संसद में कहा कि भारत द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता धर्मार्थ दान नहीं है और देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन ऋणों को चुकाने की योजना होनी चाहिए, श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते वहां भोजन, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। विक्रम सिंघे ने संसद को बताया, हमने भारतीय ऋण सहायता के तहत 4 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया है। हमने अपने भारतीय समकक्षों से अधिक ऋण सहायता का अनुरोध किया है, लेकिन भारत भी इस तरह लगातार हमारा साथ नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि उनकी सहायता की भी अपनी सीमाएं हैं। दूसरी ओर हमारे पास भी इन ऋणों को चुकाने की योजना होनी चाहिए। ये धर्मार्थ दान नहीं है। उन्होंने आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों के बारे में संसद को बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च पदस्थ अधिकारियों का एक दल स्थानीय आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के लिए बृहस्पतिवार को कोलंबो पहुंचने वाला है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।